पृष्ठ संख्या 184 15। यह सही बिंदु है जहाँ से हम उत्तर छायावादी साहित्य की पड़ताल आरंभ कर सकते हैं। छायावादी काव्य और उसके समानांतर लिखा गया गद्य साहित्य आधुनिक सृजनशीलता की श्रेष्ठतम उपलब्धि में है। कविता में जो छायावाद युग है, नाटक के क्षेत्र में वह प्रसाद युग, कथा साहित्य में प्रेमचंद युग और आलोचना में शुक्ल युग है। प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल एक संपूर्ण और समृद्ध साहित्य की नाममाला है। उत्तर छायावाद स्पष्ट ही इस तुलना में हल्का पड़ता है। छायावाद की बुनियादी सांस्कृतिक चिंताएं इनके योग्य न थी, इनकी रुचि तात्कालिक समाधानों में अधिक थी। संदर्भ चाहे प्रेम के हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के या फिर मानव क्रांति के, मनुष्य जीवन की नश्वरता के दबाव के बीच ये किसी सार्थक उद्देश्य के लिए उत्सर्ग को लालायित थे। छायावाद के ठीक पहले माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन में कुछ ऐसे ही स्वर थे। उत्तर छायावाद की स्थिति में उत्सर्ग भाव व्यक्तिगत संदर्भों से अधिक जुड़ गया। काव्य भाषा की दृष्टि से भी छायावाद की इन दोनों छोरों पर सरलता का आग्रह दिखता है, जबकि छायावाद की सामान्य काव्य भाषा तत्सम शब्दावली पर आधारित थी। निराला ने अपने एक पत्र में लिखा था, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यूँ छायावाद के संश्लिष्ट जीवनानुभव उत्तर छायावाद में सीधे सरल अधिक हो चले। पृष्ठ संख्या 185। उत्तर छायावादी परिदृश्य की प्रतिनिधि मानसिकता की एक अभिव्यक्ति भगवती चरण वर्मा के इस गीत में मिलती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कुछ ऐसा ही अंदाज नवीन में है, हम अनिकेतन पर लय की सच्चाई भगवती चरण के गीत में मिलती है, जिसके निखरने में कुछ योग उर्दू मुहावरे का है। बच्चन ने तो अपना आरंभिक काव्य ही मधुशाला के प्रतीकों में लिखा, जो बात के संकलन मधुबाला और मधुकलश में अधिक गीतात्मक बनता है। इन कवियों की मनस्थिति कई प्रकार के तत्वों से बनी थी। एक ओर लंबी पराधीनता की निराशा, दूसरी ओर जवानी का अधीरज, बीच में प्रणय, स्वाधीनता और मानव मुक्ति के सपने। इन सब ने मिलकर उत्तर छायावादी कवियों में एक खास तरह का नियतिवाद विकसित कर दिया था। भाग्य की व्यक्तिगत अवधारणा में इतिहास की व्यापक शक्ति को जोड़ने पर नियति का रूप बनता है। जहाँ तक छायावादी कवियों का संबंध है, उनकी अद्वैत निष्ठा समूचे संघर्ष के बीच उनमें संकल्प शक्ति भरती है। राम की शक्ति पूजा का समापन निराला करते हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, और श्रद्धा सर्ग के अंतिम अंश में कामायनी कहती है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। जो अद्वैतवादी नहीं, प्रसाद के शब्दों में, जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था, उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। भक्त कवियों ने अपने इष्टदेव को त्राणकारी की भूमिका में देखा और भक्तों ने नियति की परिकल्पना बहुत कुछ इसी रूप में की। नियति का दौर प्रसाद में भी है, खास तौर से जब फारसी उर्दू शायरी के संपर्क में वे आंसू की रचना करते हैं। आगे भगवती चरण वर्मा और बच्चन में तो यही स्वर प्रमुख हो जाता है। यह आकस्मिक नहीं है कि 11वीं-12वीं शती के फारस के प्रसिद्ध कवि उमर खय्याम का काव्य और फिट्ज़ेराल्ड कृत उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रथम प्रकाशन 1859 छायावाद के समानांतर हिंदी क्षेत्र में एक बार भी लोकप्रिय हो गया। मैथिली शरणगुप्त जैसे देसी मन के आस्थावादी भक्त से लेकर अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ अध्यापक बच्चन तक अनेक कवि इसके अनुवाद में रुचि लेते हैं। छायावाद के पहले द्विवेदी युग में जैसे कालिदास के अनुवादों को लेकर सक्रियता हुई, कुछ वैसे ही उत्तर छायावाद के युग में खय्याम के अनुवादों को लेकर। इस बदलती रुचि का एक कारण तत्कालीन कवियों की मनोदशा थी। अपनी पुस्तक खय्याम की मधुशाला के तीसरे संस्करण 1946 में बच्चन ने अनुवाद के साथ एक विस्तृत और व्यवस्थित भूमिका दी है, जिसमें उन्होंने चौथे दशक में प्रकाशित खय्याम के एक दर्जन से अधिक हिंदी अनुवादों का उल्लेख किया है। उदास नियतिवाद की इस मनस्थिति में क्षणभंगुर जीवन और उसके यथाशक्य उपभोग के गीत गाए गए। भगवती चरण वर्मा और बच्चन के साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल अंचल कहीं न कहीं उत्तर छायावाद के इस दौर से जुड़े हुए हैं। अकेले राम कुमार वर्मा ऐसे कवि हैं जो छायावाद की मूल निष्ठा में चलते हैं। आगे चलकर कुछ कवि मार्क्स के दर्शन और सर्वहारा की अटल विजय के विश्वास में सहारा पाते हैं और अपने को प्रगतिशील कहते हैं, जबकि कुछ अन्य अपनी रचनाशीलता में आस्था रखते हैं और प्रयोगशील कहे जाते हैं। छायावाद में राम, कृष्ण, विवेकानंद जैसी लोकोन्मुख अद्वैत चेतना और इस नई प्रकार की निष्ठा के बीच का अंतराल उत्तर छायावादी कवियों का है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत को आगे किया था। छायावाद उत्तर परिदृश्य पर केंद्रीय कवि व्यक्तित्व तो किसका होगा, इसे लेकर कई तरह के पृष्ठ संख्या 186 अनुमान और तर्क हो चुके हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने अपने वृहद संकलन कविता कौमुदी भाग दो के चतुर्थ परिवर्धित संस्करण 1939 में खड़ी बोली की कविता का संक्षिप्त परिचय देते हुए लिखा था, बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को पहले ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत पहले अंचल से मानते हैं और नगेंद्र गिरजा कुमार माथुर से। रामविलास शर्मा की दृष्टि 50 के आसपास उभरते गीतकारों पर थी। आधुनिक समीक्षक नामवर सिंह की व्यंजना है कि इस केंद्रीय स्थिति में गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य होगा। इतिहास अब तक इनमें से बहुत से मूल्यांकनों को गलत साबित कर चुका है। सही क्या होगा? यदि सही शब्द को समीक्षा के संदर्भों में संगत प्रयोग माना जाए, यह आज भी आलोचनात्मक जिज्ञासा का विषय है, भविष्यवाणी का नहीं। उत्तर छायावाद में राम कुमार वर्मा, जैसा कहा गया, छायावाद की रहस्योन्मुख मनस्थिति से जुड़े रहते हैं। उनके गीतों में वैसे ही प्रचलित प्रतीकों का प्रयोग हुआ है जिनकी ओर रामचंद्र शुक्ल ने अपने एक कवित्व में संकेत किया है। अपने बाद के वर्षों में एक प्रबंध काव्य एकलव्य की भी वे रचना करते हैं जिसमें पौराणिक कथाओं की युगीन व्याख्या देने का द्विवेदी युग जैसा प्रयत्न हुआ है। भगवती चरण वर्मा, जो राम कुमार वर्मा के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, अपनी ओर से एक नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं और उल्लास तथा उदासी के मिले जुले स्वर में घोषित करते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। काशी विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग आलोचना और काव्यशास्त्र के क्षेत्र में इस शताब्दी के आरंभिक दशकों में नई उद्भावनाएं कर रहा था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वातावरण में बल रचनात्मकता पर था। यह भी स्मरणीय है कि ब्रजभाषा कविता का अंतिम दौर काशी में पूरा हो रहा था, जबकि आधुनिक खड़ी बोली कविता गति पकड़ रही थी इलाहाबाद में। यहाँ के परिसर पर महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि कई विभागों के सहयोग में रचनात्मकता सक्रिय थी। ब्रजभाषा काव्य के अंतिम चरण में इतिहास विभाग के पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी और हिंदी विभाग के राम शंकर शुक्ल रसाल काशी के कवि रत्नाकर के साथ रसिक मंडल नामक गोष्ठी बनाए हुए थे। रत्नाकर के उद्धव शतक के प्रवर्तक प्रकाशक रसिक मंडल के सदस्य थे। महत्वपूर्ण परिदृश्य उधर था जहां खड़ी बोली कविता के संरक्षक श्रीधर पाठक थे, जो उन वर्षों में इलाहाबाद में रह रहे थे और जहां विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में उनकी पुत्री ललिता पाठक अध्यापक हुई। छायावादी कवि इस परिवेश में अपनी नई सृजनात्मकता के साथ प्रवेश करते हैं, जिसका विरोध बहुत होता है पर जिसे नैतिक समर्थन विश्वविद्यालय परिसर पर मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा विश्वविद्यालय के तत्सदस्य थे और वहां अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर शिवाधार पांडे छायावादी कवियों विशेषतः सुमित्रा नंदन पंत की नई काव्य प्रतिभा के प्रशंसक और संरक्षक जैसे थे। सरस्वती के 1922 के एक अंक में पंत के काव्य उच्छ्वास की उन्होंने काव्यात्मक शैली में समीक्षा की थी। निराला इस वातावरण से बाहर थे जिसके कारण वे जब तब अपने शोक का लक्ष्य विश्वविद्यालय समाज को बनाने में नहीं चूकते थे। पंत से उनकी स्पर्धा का एक मुख्य आधार विश्वविद्यालय से मिलने वाले समर्थन को लेकर भी था। 1928 के एक पत्र में विनोद शंकर व्यास को निराला लिखते हैं, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, पृष्ठ संख्या 187। यहाँ संदर्भ काशी के विभाग का है। 36 में ब्रजमोहन तिवारी को उन्होंने लिखा, बुरा न माने, इसी से कभी कभी विश्वविद्यालय के बलिवर्दों की पूँछ मरोड़ देता हूँ। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा भाषण है। मूल पत्र अंग्रेजी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और नगर की ऐसी गहमा गहमी में छायावाद को संपन्न मानकर भगवती चरण वर्मा कुछ दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। यह भी स्मरणीय है कि इस वातावरण का खाका खींचते हुए उन्होंने अपने उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का एक अध्याय लिखा था, जिसे बाद में हटा दिया गया। यह सच है कि आगे चलकर उनकी ख्याति कथाकार के रूप में होती है, पर यह भी सच है कि उनकी कविताओं ने उत्तर छायावाद का रूप सबसे पहले बनाया। इस युग की कई मनस्थितियां और बोलचाल की लय उनकी कविताओं जैसे मानव, भैंसा गाड़ी, राजा साहब का वायुयान में एक साथ दिखती हैं। इलाहाबाद के परिसर से निकटता संबद्ध इस युग के एक अन्य कवि बच्चन ने अपने नगर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लिखा, गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से। छायावाद के पहले श्रीधर पाठक से लेकर नई कविता तक के दौर में अनेक कवि और लेखक लिखने के लिए इलाहाबाद में रहे, फिर रहने के लिए बाहर जाकर उन्होंने लिखा, यह अलग बात है। नगर ने भी बहुत बार उनके उन्मुक्त तरह के जीवन को सहज भाव से स्वीकार किया। यह आकस्मिक नहीं कि उत्तर छायावाद युग के कई नाटककार, उपन्यासकार तथा कवियों ने दूसरे विवाह के बाद बाहर से आकर यहीं अपना घर बनाया। इस दृष्टि से भारत में इटली और रोम जैसा वातावरण हिंदी साहित्य के लिए इलाहाबाद ने जुटाया है। बच्चन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कविता में बोलचाल का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में यह लक्षित करना रोचक है कि कैसे घरेलू पुकार का साधारण नाम बच्चन आधुनिक हिंदी कविता का क्रमशः एक महत्वपूर्ण नाम बन गया। बच्चन का ध्यान उर्दू काव्य शैली पर भी था, जहाँ भाषा के बोले जाने वाले रूप का प्रयोग सर्वाधिक काम में रहा है। जहाँ गजल लिखी नहीं कही जाती है, बोलचाल भी अपने नगर इलाहाबाद से सीखते हैं, तो उर्दू काव्य शैली के प्रभाव के लिए उसके सबसे बड़े कवि मीर के प्रति आभारी हैं। कोई ना खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने। बच्चन अपने काव्य विकास के क्रम में उत्तर उत्तर उर्दू की साफ गोई की ओर झुकते गए, पर उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उर्दू बोलचाल का मुहावरा हिंदी की शब्द व्यंजना प्रधान काव्य भाषा से मेल नहीं खाता, वहाँ वह महज इतिवृत्त कथन जैसा होकर रह जाता है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। दोनों स्थितियों में पूर्ववर्ती युग की प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति आगे बलवती हो उठती है, और यह संयोग से कुछ अधिक है कि जहाँ भक्ति काव्य और छायावाद में जीवन को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया, वहाँ रीति काव्य और उत्तर छायावाद में शरीर के अनुभवों को अधिक महत्व मिला। जैसी सूर तुलसी के बाद जैसे बिहारी मतिराम देव का क्रम है, कुछ वैसे ही प्रसाद निराला पंत के बाद बच्चन दिनकर नरेंद्र का। बच्चन का उत्तरकालीन काव्य दिनकर की उर्वशी और नरेंद्र अंचल के गीत शारीरिक अनुभवों और उसके उल्लास का अकुंठ भाव से अंकन करते हैं। दिनकर ने अपनी प्रबंध कृति उर्वशी के माध्यम से तो कामाध्यात्म की भावभूमि को व्यवस्थित रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा है। इस संदर्भ में पूर्व बच्चन और उत्तर बच्चन की संवेदना के बीच स्पष्ट अंतर परिलक्षित होता है, जिसकी विभाजक रेखा उनके गीत संग्रह मिलन यामिनी में देखी जा सकती है। पृष्ठ संख्या 188। पहले दौर में अनुभव प्रधान है, दूसरे में शरीर। यहाँ रचना समस्या यह है कि छायावाद की सांकेतिक शैली में संयोग चित्र, उदाहरण के लिए आंसू का प्रसंग, परिरंभ कुंभ की मदिरा, निश्वास मलय के झोंके जहाँ कल्पना का उद्दीप्त करते हैं, वहाँ सीधी सादी भाषा में शरीर के चित्र शरीर को ही स्पर्श करते हैं। उर्दू के कवि अपने सीधे भाषिक विधान में इसीलिए विरह वेदना का चित्रण अधिकतर लेते हैं, शरीर की भंगिमाओं को नहीं। इस संदर्भ में मधुबाला से लेकर एकांत संगीत तक बच्चन अपने श्रेष्ठतम रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद का काव्य प्रायः उनके निजी सुख दुख का लेखा होकर रह जाता है। पूर्व बच्चन का कृतित्व उत्तर छायावाद का प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण काव्य है। उत्तर छायावाद अभिव्यक्ति की मुखरता का काव्य है, इसका उल्लेख हो चुका है। रामधारी सिंह दिनकर में पहले से चली आती राष्ट्रीय भावधारा, दार्शनिक और वैचारिक समस्याएं तथा काम की महिमा, जीवन के ये सभी पक्ष अति कथित हैं, जिसका साक्ष्य हुंकार की कविताएं, कुरुक्षेत्र का प्रबंध विधान और उर्वशी का काव्य रूपक क्रमशः प्रस्तुत करते हैं। सरल भाषा का आग्रह और कवि सम्मेलनों में तात्कालिक संप्रेषण पर बल बच्चन और दिनकर के काव्य में परस्पर कार्य कारण का रूप धारण कर लेते हैं। बोलचाल के मुहावरे ने उर्दू कविता को मुशायरों में लोकप्रिय बनाया, पर जैसा संकेत किया गया, हिंदी काव्य भाषा की प्रकृति मुहावरे पर नहीं अप्रस्तुत विधान पर अधिक निर्भर रही है। फलतः सरल भाषा कवि सम्मेलनों में लोकप्रिय तो हुई, पर ऐसी रचनाओं में विधान की सघनता नहीं रह सकी। जो कविता प्रभाव के लिए पाठ या गेयता की जितनी अपेक्षा रखती है, अपने भाषिक गठन में वह उतनी ही कमजोर होती है। दिनकर के काव्य में व्यक्तित्व का तत्व प्रबल है, जिसका आरंभ उनकी राष्ट्रीय कविताओं जैसे दिल्ली, हाहाकार, विपथगा, समरशेष है में मिलता है, और जो फिर उनके विचार प्रधान काव्य कुरुक्षेत्र और उर्वशी के संवादों में अधिक अधिकार के साथ प्रवेश करता है। इस वक्तित्व की एक स्वरता को भंग करने के लिए कवि ने विषय वैविध्य पर अधिक ध्यान दिया है। यहाँ न उर्दू के मुहावरे की व्यंजना है और न हिंदी के अप्रस्तुत विधान की, यह अधिकतर आवाहन और उद्बोधन की कविताएं हैं। दिनकर की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने राष्ट्रीय काव्य जैसी गहरी निष्ठा के साथ पराधीनता के युग में लिखा, वैसे ही तीखी आलोचना के स्वर में स्वाधीन देश में। उर्वशी उनकी काव्य क्षमता की सही निष्पत्ति है, जिसमें महाकाव्य और नाटक की उदात्तता को एक साथ मिलाया गया है। कामायनी के क्रम में उर्वशी का यह कवि यह दृष्टि उभारता है कि देव सृष्टि के अमूर्त और वायवीय प्रेम प्रसंग की तुलना में मानवीय संबंधों की मानसलता अधिक स्पृहणीय है। मानवीय संस्कृति देव सृष्टि की तुलना में अधिक विकसित है, यह मान्यता प्रसाद की भी है, पर उनके तर्क की दिशा दूसरी तरफ है। उनकी वंदना है कि अजर अमर देव सृष्टि सुख और भोग विलास के स्थूल जीवन मूल्यों की सभ्यता थी, जबकि मानवीय सृष्टि ने नश्वर होकर सूक्ष्म प्रेम की भावना और रचनात्मकता को विकसित किया। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच दृष्टि का एक बुनियादी अंतर यहाँ देखा जा सकता है। समानता इस बात में है कि दोनों जगह देव सृष्टि की तुलना में मानवीय सृष्टि को स्पृहणीय माना गया है, जो मध्यकालीन मान्यताओं के एकदम विरुद्ध है। आधुनिक काव्य और चिंतन की विशेषता है कि वह मनुष्य को केंद्रीय महत्व प्रदान करता है और इसीलिए नश्वरता के लिए अभिशप्त होकर भी वहां उसे एक स्मरणीय जीवन मूल्य के रूप में वर्णन किया गया है। प्रसाद की कामायनी और दिनकर की उर्वशी के प्रबंध विधान में यह दृष्टि विकसित हुई है। पृष्ठ संख्या 189। महादेवी ने अपने गीतों में नश्वरता को अधिकार के रूप में मांगा है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसमें जाना मिटने का स्वाद। क्यों अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। यह मानवीय आत्मविश्वास आधुनिक काव्य का एक मूल स्वर है। नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और शिव मंगल सिंह सुमन मूलतः प्रेम के गायक हैं, यद्यपि आगे चलकर अंचल और सुमन प्रगतिवादी विषय वस्तुओं में भी रुचि लेते हैं। इसी पीढ़ी के एक अन्य कवि बालकृष्ण राव में ब्रजभाषा का वाग् वैदग्ध्य और द्विवेदी युग की तार्किकता रोमांटिक भाव बोध के साथ मिली जुली दिखती है। सघन और शांत गीतात्मकता आरंभिक नरेंद्र की विशेषता है। दूर कहीं पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की गूंज सुनाई देती है। अपने युग के निराशावाद की व्याख्या करते हुए प्रवासी के गीत 1939 के वक्तव्य में कवि का कहना है, ब्रिटिश सत्ता के कारण हमारे समाज में वर्गीकरण कुछ ऐसे ढंग से हुआ कि हमारे कवियों तथा अन्य साहित्यकारों को किसी भी वर्ग में स्थान न मिल सका। ऐसी अवस्था में कवियों का निराशावादी हो जाना स्वाभाविक था। निराशावादियों और नियतिवादियों के आगमन से हिंदी गीत काव्य का उत्तरार्ध शुरू होता है। ये दोनों मनस्थितियां नरेंद्र के प्रसिद्ध गीत में मिलती हैं, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। दूसरा पक्ष है गोपाल सिंह नेपाली के गीतों का, जहाँ जीवन और यौवन का सहज उल्लास है। अंचल और सुमन के काव्य में यदि एक ओर शरीर का आकर्षण है तो दूसरी ओर भौतिकवादी विचार पद्धति का, जो उन्हें निराशावादी और नियतिवादी नहीं बन जाने देता। अपने उपनाम से लेकर अपनी प्रसिद्ध कविताओं मेरा वश चलता मैं बन जाता कौमार्य तुम्हारा तक, नारी के शारीरिक सौंदर्य से अंचल का सहज लगाव रहा है, पर उनकी दृष्टि में सौंदर्य के प्रति सम्मान और संभ्रम में कमी नहीं आती, उसके लिए सारी ललक के बावजूद। रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रेम के बीच जो विभाजक रेखा अपने निबंध में खींची है, उसे संधि रेखा के रूप में जैसे अंचल ने ग्रहण किया है। फिर नारी संदर्भ में यदि कवि का मन अटकता है तो सामाजिक कुरूपता का दृश्य उसे कचोटता और उत्तेजित करता है। सुमन दिनकर की तरह वक्तृत्व के कवि हैं, जिस तत्व के माध्यम से वे सहज ही प्रगतिवादी काव्य आंदोलन से जुड़ते हैं। रूस की लाल सेना और मॉस्को की अपराजेय शक्ति का उन्होंने मुक्त कंठ से गुणगान किया है। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से कवि को जैसी प्रखर आशा आकांक्षा है, वैसे ही गहरी निष्ठा उसकी अपने जनजीवन में है। कालिदास, गांधी और निराला उसकी रचना के प्रेरक व्यक्तित्व हैं, जिनसे वह सांस्कृतिक और जातीय आदर्श पाता है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के विधान के लिए साम्यवाद की ओर देखता है। काव्य निष्ठा के प्रसंग में ऐसा बंटवारा कोई कठिनाई नहीं उपस्थित करता, पर व्यावहारिक जीवन में यह द्वैत एक सीमा के बाद चल नहीं पाता। साम्यवाद और राष्ट्रीयता के ये तनाव अपनी जगह बने हुए हैं।